الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسکرانا سنت ہے، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 245 تا 258 سے لیا گیا ہے. دعائے اتار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مسکرانا سنت ہے پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے مسکرانے والے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت سے مشرف کر کے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث مبارکہ میں مسکرا کر ملنے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کو صدقہ کہا گیا. سبحان اللہ، مسکرا کر ملنے کی تو کیا بات ہے. مسکرا کر ملنا، مسکرا کر کسی کو سمجھانا، عموماً نیکی کی دعوت کے مدنی کام کو نہایت سہل و آسان بنا دیتا اور حیرت انگیز نتائج کا سبب بنتا ہے. جی ہاں، آپ کی معمولی سی مسکراہٹ کسی کا دل جیت کر اس کی گناہوں بھری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتی ہے، اور ملتے وقت بے رخی اور لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہاتھ ملانا کسی کا دل توڑ کر اس کو معاذ اللہ گمراہی کے گہرے گڑھے میں گرا سکتا ہے. لہذا جب بھی کسی سے ملیں، گفتگو کریں، اس وقت حتی الامکان مسکراتے رہیے. اگر خشک مزاجی یا بے توجہی سے ملنے کی خصلت ہے تو ملنساری اور مسکرا کر ملنے کی عادت بنانے کے لیے خوب کوشش کیجئے، بلکہ مسکرانے کی عادت پکی کرنے کے لیے ضرورتاً کسی کی ذمہ داری بھی لگائیے کہ وہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے آپ کا منہ پھولا ہوا یا سپاٹ محسوس کرے تو گاہے بگاہے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہتا رہے، یا آپ کو اس طرح کی تحریر دکھا دیا کرے. بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے. جی ہاں، واقعی یہ سنت ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حسن اخلاق 73 صفحات صفحہ 15 پر ہے، حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ ہر بات مسکرا کر کیا کرتے. جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. شرح کلام رضا حدائق بخش شریف میں شامل سلام رضا کے اس مصرعے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے کا آخری لفظ پڑے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی مدنی سوچ کا عظیم شاہ پارا ہے، کیونکہ اگر پڑھے کے بجائے پڑھے لکھتے تو مانن کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ مانا جاتا، مگر اعلی حضرت نے پڑھے لکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صفت بیان فرما دی. چنانچہ اس مصرعے کا معنی ہے، हयाते ज़ाहिरी में तो तस्कीन देने से गमज़दा दिलों की कलियां खिल उठती थीं, मगर आज भी सरकारे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जब किसी दुखियारे को ख्वाब में या किसी गुलाम को कब्र में तसल्ली देते हैं तो वो पुरसुकून हो जाता है। इस मिसरे में ये भी इशारा है कि महशर में भी अपने गुनाहगार उम्मतियों को ढारस बंधाकर चैनो करार बख्शेंगे। दूसरे मिसरे के माना है उस तस्कीन बख्श आदते करीमा पर लाखों सलाम हों। हजरत मौलाना सैयद अख्तरुल हामदी रहमतुल्लाही अलैह ने इस शेर पर क्या खूब तज़मीन बांधी है। मुस्तरिब गम से होते हुए हंस पड़े, रंज से जान खोते हुए हंस पड़े, बख्त जाग उठे सोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाथ मिलाने में मुस्कुराना मगफिरत का बाइस है। एक रिवायत में है कि सैयदना नुफे आमा रदी अल्लाह अनहु फरमाते हैं कि हज़रत सैदा बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह अनहु से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे मुसाफहा फरमाया, यानी हाथ मिलाए और मुस्कुराने लगे। फिर पूछा, जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने अर्ज़ की, नहीं। तो फरमाने लगे कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मुझे शरफ़े मुलाकात बख्शा तो मेरे साथ ऐसा ही किया। फिर मुझसे पूछा, जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? तो मैंने अर्ज़ की, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मुसलमान मुलाकात करते वक्त मुसाफहा करते, यानी हाथ मिलाते हैं, और दोनों एक दूसरे के सामने अल्लाह पाक के लिए मुस्कुराते हैं तो उनके जुदा होने से पहले ही उनकी मगफिरत कर दी जाती है। बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुस्कुराने की अच्छी बुरी नीयतें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मस्कुरा हदीस पाक में लफ्ज़ अल्लाह के लिए अच्छी नीयत की सराहत करता है। बहरहाल किसी मुसलमान से हाथ मिलाना और दौरान गुफ्तगू मुस्कुराना सिर्फ इसी सूरत में बाइसे सवाब आखरत व मगफरत है, जबकि ये हाथ मिलाना और मुस्कुराना सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा पाने की नीयत से हो। अपनी मिलनसारी का सिक्का जमाने, किसी मालदार या सियासी शख्सियत की खुशनुदी पाने, दुनियावी मजमूम मफाद परस्ती वाली जाती दोस्ती बढ़ाने और माअल्लाह अमृत के हाथों के मसास यानी छूने और उसकी जवाबी मुस्कुराहट के जरिए गुनाहों भरी लज्जत पाने वगैरह बुरी नीयतों के साथ ना हो, वाकई वो इस्लामी भाई बड़े खुश नसीब हैं जो रिजा इलाही पाने, अपनी मगफिरत करवाने, इत्तेबाए सुन्नत का सवाब कमाने, मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल फरमाने, इनफरादी कोशिश के जरिए इस्लामी भाइयों को नेक आमाल का आमिल और सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफलों का मुसाफिर बनाने वगैरह हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मुलाकातों बात करते हुए मुस्कुराते रहते हैं। कह कहा शैतान की तरफ से है। खिलखिलाकर हंसना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये सुन्नत नहीं बल्कि ये तो शैतान की जानिब से है। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल-क़हक़हतु मिनश शैतानी व तबस्सुमु मिनल्लाह, यानी क़हक़हा शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से है। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रऊफ मुनावी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, कहकहे से मुराद आवाज़ के साथ हंसना है। शैतान इसे पसंद करता है और उस पर सवार हो जाता है, जबकि तबस्सुम से मुराद बग़ैर आवाज़ के थोड़ी मकदार में हंसना है। مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسکرانا اچھی چیز ہے اور قہقہا بری چیز۔ تبسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، لہذا جب کسی سے ملو مسکرا کر ملو۔ قہقہا گناہ نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رہے قہقہا لگانا اگرچہ شیطان کی طرف سے ہے، برا بھی ہے اور سنت بھی نہیں، تاہم گناہ نہیں ہے۔ بالفرض کسی عالم صاحب یا بزرگ کو قہقہا لگاتا پائیں تو ان کی طرف سے اپنے دل میں ہرگز کسی قسم کا میل نہ لائیں۔ خاموشی زیادہ ہنسی کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خاموشی اختیار کرنے والے اور کم ہنسنے والے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کو جمع کرنے سے جو بات ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر تبسم سے زیادہ نہیں ہنستے، اور کبھی زیادہ ہو جاتا تو وہ ہنسی ہوتی، اور ظاہر یہی ہے کہ قہقہا نہ ہوتا۔ کیا صحابہ ہنستے تھے؟ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہنستے تھے؟ فرمایا، ہاں، اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے مضبوط تھا۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، شاید سائل یعنی پوچھنے والے نے وہ حدیث سنی ہوگی، زیادہ ہنسنا دل مردہ کرتا ہے، تو اس نے سوچا ہوگا کہ حضرات صحابہ علیم رضوان کبھی نہ ہنستے ہوں گے، کیونکہ وہ حضرات تو زندہ دل تھے، پھر انہیں ہنسی سے کیا تعلق؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں میں جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہنسنا حرام نہیں، حلال ہے۔ وہ حضرات یعنی صحابہ کرام علیم رضوان وہ ہنسی نہ ہنستے تھے جو دل مردہ کر دے، یعنی ہر وقت ہنستے رہنا، بلکہ وہ ہنسی ہنستے تھے جو دل کو شگفتہ یعنی تر و تازہ رکھے اور سامنے والے کو بھی شگفتہ یعنی تر و تازہ بنا دے۔ کسی کو ہنستا دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جب کسی کو ہنستا دیکھیں تو بخاری شریف میں وارد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ پاک تجھے ہنستا رکھے۔ مبلغ اعلان کے ذریعے مسجد میں ہنسنے کی ممانعت کرے۔ مسجد میں موقع کی مناسبت سے مسکرانے کی تو اجازت ہے، مگر ہنسنے یا قہقہا لگانے کی اجازت نہیں۔ لہذا مسجد میں دوران بیان کوئی ایسی بات آنے لگے جس میں حاضرین کے ہنسنے کا امکان ہو تو مبلغ کو چاہیے کہ وہ اس طرح اعلان کرے۔ توجہ فرمائیے، ابھی ہم مسجد میں ہیں اور مسجد میں ضرورتاً صرف مسکراہٹ کی اجازت ہے، یعنی فقط ایسی ہنسی جس کی خود کو بھی آواز نہ آئے، آواز سے ہرگز نہ ہنسیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ نماز میں ہنسنے کے احکام۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام 496 صفحات صفحہ 30-31 پر ہے۔ نمبر 1، رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہا لگا دیا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا، تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے۔ مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بالغ نے نماز جنازہ میں قہقہا لگایا تو نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے۔ نمبر 3، نماز کے علاوہ قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ये कहकहा ना लगाने की सुन्नत भी जिंदा हो और हम जोर जोर से ना हंसें। मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है। हज़रत सैयदना अबू ज़र रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रूह परवर है, तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है, नेकी का हुक्म देना भी सदका है, बुराई से मना करना भी सदका है, भटके हुए की रहनुमाई करना भी सदका है, कमज़ोर निगाह वाले की मदद करना भी सदका है, रास्ते से पत्थर कांटा और हड्डी का हटा देना भी सदका है, अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना भी सदका है। नीज एक रिवायत में फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम है, हर कर्ज सदका है। माली सदक़े की तारीफ। उमूमन जब लफ्ज़ सदका बोला जाता है तो जहन खैरात की तरफ जाता है, बेशक खैरात को भी सदका बोलते हैं। आइए लगे हाथों माली सदक़े की तारीफ मालूम करते हैं। चुनाचे दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब ज़ियाए सदकात 415 सफ़ात सफ़ा 32 था 33 पर है, लुगत में सदका से मुराद अतियतुन युरादु बिहल मसवबतु लल मकरमतु, यानी सदका वो अतिया यानी गिफ्ट है जिसके ज़रिए अपनी इज्जत बढ़ाने के बजाय सवाब का इरादा किया जाए। मतलब यह है कि वो अतिया यानी इनाम सदका कहलाता है जिसके देने का मकसद अपनी इज्जत बढ़ाना और वाह वाह चाहना ना हो, सिर्फ सवाब की नीयत से दिया गया हो। अल्लामा सैयद शरीफ जुर्जानी हनफी रहमतुल्लाही अलैह ने सदक़े की तारीफ इन अल्फाज में बयान की, हियल अतियतु तबतगी बिहल मसवबता मिनल्लाही तआला, यानी सदका वो अतिया यानी गिफ्ट है जो अल्लाह पाक की बारगाह से सवाब की उम्मीद पर दिया जाए। सदके से इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। शरहे कलामे रजा। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाही अलैह इस नातिया शेर में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे बारी के इस इनाम व इकराम पर मैं वारी जाऊं कि उसने आपको तमाम मखलूकात में सबसे बुलंद शान का मालिक किया है और ये उसी का करम है कि दोनों जहानों में आपकी अजमतों और रिफातों के डंके बज रहे हैं। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अंदरूनी अमराज एकदम गायब हो गए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाजों और सुन्नतों पर अमल की आदत डालने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हर दम वाबस्ता रहिए। नेक बनने के नुस्खे पर मबनी नेक आमाल के मुताबिक ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजार कर अपने आप को सुन्नतों के सांचे में ढालने की कोशिश करते रहिए। सुन्नतों की तरबियत के लिए मदनी काफ़िलों में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफ़र कीजिए। आपकी तरगीब व तहरीस के लिए मदनी काफ़िले में सफ़र की बरकत से एक अंदरूनी अमराज से दूचार मरीज़ की शिफा याबी की एक मदनी बहार आपके गोश गुजार करता हूँ। चुनांचे एक इस्लामी भाई का कुछ इस तरह बयान है कि मैं एक अरसे से बाज़ अंदरूनी अमराज का शिकार था। मर्ज की शिद्दत का ये आलम था कि जब भी सोता आजमाइश हो जाती, इलाज पर कसीर रकम खर्च करने के बावजूद इफाका ना हुआ। मैं इस मर्ज से तंग आ चुका था। मैंने जब सुना कि मदनी काफिलों में दुआएं कबूल होती हैं तो हिम्मत करके सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले का मुसाफिर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में सफ़र के दौरान मैंने दुआ की और इसकी बरकत से मेरा मर्ज़ ऐसा ख़त्म हुआ कि गोया कभी था ही नहीं। कल्ब पर जंग हो काफिले में चलो, नफ्स से जंग हो काफिले में चलो, पाँव में लंग हो काफिले में चलो, दर्द से तंग हो काफिले में चलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुआ की कबूलियत में ताखिर से ना घबराइए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिलों में सुन्नतों भरा सफ़र शिफा का सबब बन गया, और क्यों ना बनता कि दौरान सफ़र और वो भी आशिकाने रसूल के कुर्ब में दुआएं जो मांगी थी। अल्लाह पाक के नेक बंदों के कुर्ब में मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। अगर कभी कबूलियत दुआ में ताखीर हो तो घबराना और जल्दी मचाना ना चाहिए। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब फजाइले दुआ 318 सफहात सफ़ा 97 पर है। दुआ के कबूल में जल्दी ना करे, हदीस शरीफ में है कि खुदाए पाक तीन आदमियों की दुआ कबूल नहीं करता। एक वो कि गुनाह की दुआ मांगे, दूसरा वो कि ऐसी बात चाहे कि कत्ए रहम यानी रिश्ता काटना हो, तीसरा वो कि कबूल में जल्दी करे कि मैंने दुआ मांगी अब तक कबूल ना हुई। ऐसा शख्स घबरा कर दुआ छोड़ देता है और मतलब से महरूम रहता है। दुआ की कबूलियत का नुस्खा। किसी मरीज को शिफा ना होती हो तो पहले कुछ खैरात कर दीजिए, फिर गैर मकरू वक्त में 2 रकात नफल अदा करके गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। फजाइल दुआ सफ़ा 59-60 पर है। कबूलियत दुआ के आदाब में से अदब नंबर 5, दुआ से पहले कोई अमल सालेह यानी नेक अमल करे कि खुदाए करीम की रहमत इस दुआ करने वाले की तरफ मुतवज्जे हो। सदका खुसूसन पोशीदा इस अम्र में असरे तमाम रखता है, यानी बिलखसूस छुपा कर खैरात करना दुआ की कबूलियत में बहुत मुअस्सिर है। पारा 28 सूरतुल मुजादिला आयत नंबर 12 में है। فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً। तर्जमाए कंजुल ईमान, तो अपनी अर्ज से पहले कुछ सदका दे लो। दुआ से कबल सदका देना वाजिब नहीं मुस्तहब है। सफा 61 पर है। अदब नंबर 9, वक्त कराहत ना हो तो 2 रकात नमाज खुलूस कल्ब से पढ़े कि जालिबे रहमत यानी रहमत का सबब है और रहमत मूजिब नेमत। 12 वक्तों में नवाफिल पढ़ना मना है। इन 12 अवकात की तफसील मकतबतुल मदीना की किताब फजाइले दुआ सफ़ा 61-62 पर हाशिए में देख लीजिए। नाकारा गुर्दों का इलाज हो गया। कराची की एक शख्सियत को यरकान यानी पीलिया हो गया, पेट में पानी भर गया, गुर्दे भी फेल हो गए और बेहोशी छा गई। बहुत बड़ा आदमी था और माँ बाप का इकलौता यानी एक ही बेटा, और इनके बुढ़ापे का सहारा भी यही था। कोहराम मच गया, 18 डॉक्टर देखकर चले गए, सभी ने ला इलाज करार दिया। 19वां डॉक्टर आया, उसने उसके वालदेन को बताया कि तरीक़े इलाज में एक कमी है और वो आप ही पूरी कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत हो जाएगी, हस्बे तौफीक कुछ सदका यानी खैरात कर दीजिए। फिर 2 रकत नफल अदा करके गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए। खैरात नवाफिल और दुआ की तरकीब शुरू कर दी गई। वालिदैन 3 दिन तक गिड़गिड़ा कर अपने बेटे की सेहत की बारगाह इलाही में भीख मांगते रहे। 3रे दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दों ने काम शुरू कर दिया, यरकान और पेट के पानी में कमी आनी शुरू हुई, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हैरत अंगेज तौर पर मरीज बिल्कुल सेहत याब हो गया। शिफा दे इलाही, शिफा दे इलाही, गुनाह के मरस को मिटा दे इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 2 नशे। हजरत सैदना मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे रसूल रसूल मकबूल सैयदा आमिना रदी अल्लाहु अन्हा के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बेशक तुम लोग अपने रब्बे करीम की तरफ से दलील यानी हिदायत पर हो जब तक तुम में दो नशे जाहिर ना हो, एक जहालत का नशा, दूसरा दुनियावी जिंदगी से मोहब्बत का नशा। बस तुम लोग अभी तो नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से मना करते हो और अल्लाह पाक की राह में जिहाद करते हो, लेकिन जब तुम में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो तुम ना तो नेकी का हुक्म दोगे और ना बुराइयों से मना करोगे और ना अल्लाह पाक की राह में जिहाद करोगे। बस उस वक्त कुरान और सुन्नत की बात कहने वाला मुहाजिरीन और अंसार में सबसे पहले ईमान लाने वालों की तरह होगा। पढ़े लिखों की जहालतें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अफसोस फी ज़माना ये दोनों मज़मूम नशे आम देखे जा रहे हैं। जहालत के नशे में आज हमारी गालिब अक्सरियत बदमस्त है। शायद आप समझें कि तालीम तो खूब आम हो गई है और जगह ब जगह स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं, अब जहालत कहाँ रही है? तो माफ़ कीजिए, दुनियावी तालीम जहालत का इलाज नहीं। सही यही है कि इस्लामी अहकाम पर मबनी फ़र्ज उलूम हासिल करने ही से दीन से जहालत दूर हो सकती है। फी ज़माना मुसलमानों की भारी अक्सरियत में ज़रूरी दीनी मालूमात का बेहद फुकदान यानी ना होना है। आज दुनिया जिन लोगों को तालीम याफ्ता कहती है उनकी अक्सरियत दुरुस्त मखारिज से कुरान पाक नहीं पढ़ सकती। ये जहालत नहीं तो क्या है? पढ़े लिखों से वुजू और गुस्ल का सही तरीका या नमाज के अरकान पूछ लीजिए, शायद ही कोई बता पाए। इनसे जनाजे की दुआ सुनाने की फरमाइश कर देखिए, शायद बगलें झांकने लगें। अफसोस सद करोड़ अफसोस, आजकल अक्सर मुसलमानों की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ है। इसी की हर तरफ पजीराई यानी मकबूलियत है। सारी दौलत और कुव्वत इसी पर सर्फ की जा रही है, जबकि दीनी तालीम के इदारे मुफ्त पढ़ाने, मुफ्त खिलाने और क़याम की मुफ्त सहूलतें बाहम पहुंचाने के बावजूद वीरान पड़े हैं। यकीनन ये सब दुनियावी जिंदगी के नशे के करिश्मे हैं। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगलों की मिसल अजर, हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अज़ीम है, बेशक मेरी उम्मत में से बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अगलों यानी साहबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम की मिसल अजर दिए जाएंगे। युनकिरून अल मुनकर, वो बुराई से मना करते होंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रऊफ मुनावी रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी अल्लाह पाक मुसलमानों की उस कौम को जिनके ज़रिए दीन को तकवीत मिलेगी, साहबा किराम अलीम रिदवान की मिसल सवाब अता फरमाएगा। कोई मुबल्लिग किसी सहाबी के बराबर हो ही नहीं सकता। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मस्कूरा रिवायत से कोई ये ना समझ ले कि बुराई से मना करने वाले मुबल्लिगीन को साहबा किराम अलीम रिदवान से बराबरी हासिल हो जाएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं। ये तयशुदा अमर है कि साहबा किराम अलीम रिदवान को जो शरफ़ साहबियत हासिल है, इसका मुकाबला गैर साहबी उम्मती को मिलने वाली कोई भी फजीलत नहीं कर सकती। सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुबु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक मिसला उहुदिन ज़हबम मा बलगा मुद्दा अहदीहिम वला नसीफहु। यानी मेरे किसी साहबी को गाली ना दो, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो वो उनके एक या निस्व मुद को नहीं पहुंचेगा। मुद एक पैमाना है जो दो हिजाजी रतल का होता है और रतल तकरीबन आधे सेर वजन का होता है और कोई गैर सहाबी करोड़ों नेकियां करके भी किसी एक सहाबी रदी अल्लाहु अन्हु के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। जैसा कि मकतबतुल मदीना की किताब बाहर शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 253 पर सदर शरिया बदर तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाही अलैह लिखते हैं, कोई वली कितने ही बड़े मर्तबे का हो किसी सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंचता। सफ़ा 247 पर फरमाते हैं, हदीस में हमराहियान सैयदना इमाम महदी रदी अल्लाहु अन्हु की निस्बत आया कि उनमें एक के लिए 50 का अज्र है। साहबा अली मृदवान ने अर्ज़ की, उनमें के 50 का या हम में के? फरमाया, बल्कि तुम में के। तो अज्र उन यानी सैयदना इमाम महदी रदी अल्लाहु अन्हु के साथियों का जायद हुआ, मगर अफजलियत में वो लोग साहबा अली मृदवान के हमसर यानी बराबर भी नहीं हो सकते। ज़ियादत यानी जायद होना दरकनार। कहाँ इमाम महदी रदी अल्लाहु अन्हु की रफाकत यानी साथी होना, और कहाँ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत। इसकी नज़ीर यानी मिसाल बिला तशबी यूं समझिए कि सुल्तान यानी बादशाह ने किसी मुहिम यानी जंग पर वजीर और बाज़ दीगर अफसरान को भेजा। उस जंग की फतह पर हर अफसर को लाख लाख रुपए इनाम दिए और वजीर को खाली परवानाए खुशनुदीए मिजाज दिया। तो इनाम उन्हें यानी अफसरों को जायद मिला, मगर कहाँ वो लाख लाख रुपए पाने वाले अफसरान और कहाँ बादशाह की खुशनुदी की सनद पाने वाला वजीर आजम का एहसास। साहबा किराम अली रिदवान की शान अजमत निशान को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु के बारे में मनकूल इन दो हिकायतों से समझिए। नंबर 1, हज़रत सैयदना मुआफा बिन इमरान रहमतुल्लाही अलैह से पूछा गया, क्या हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाही अलैह हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु से बेहतर हैं? तो आप रदी अल्लाहु अन्हु को जलाला गया और फरमाने लगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी पर किसी गैर सहाबी को कियास ना किया जाए। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही और वही पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन हैं। नंबर 2, किसी ने हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाही अलैह से पूछा, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाही अलैह में से कौन अफजल है? फरमाया, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु के घोड़े की नाक में दाखिल होने वाला गुबार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाही अलैह से हज़ार गुना बेहतर है। शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफ़ई रहमतुल्लाही अलैह हिकायत नंबर 2 की वजाहत करते हुए तहरीर फरमाते हैं कि इससे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाही अलैह की मुराद ये है कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत व सोहबत का जो शरफ़ पाया है इसके बराबर कोई अमल या शरफ हो ही नहीं सकता। हमको असहाबे महबूबे खुदा से प्यार है, इंशाअल्लाह दोनों जहां में अपना बेड़ा पार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया की किताब निकी की दावत का मजमून यहां ख़त्म हुआ। मुस्कुराने के हैरत अंगेज तिब्बी फवाइद। इंसानी चेहरे में 200 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस और जज्बात मसलन गुस्सा, गम, अफसरदगी, शर्मिंदगी वगैरह का इजहार होता है और ये 200 पॉइंट्स मिलकर चेहरे पर मुख्तलिफ तासुरात देते हैं। मुस्कुराहट चेहरे के लिए वाहिद ऐसा फेल है जिसकी वजह से ये 200 के 200 पॉइंट्स हरकत में आ जाते हैं। जो शख्स मुस्कुराने का आदी नहीं होता, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस यानी जज्बात से आरी हो जाता है, बल्कि यूं समझ लें कि ठंडा हो जाता है। अल्लाह पाक ने इंसानी जिस्म में बीमारियों से लड़ने का जो सिस्टम रखा है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, मुस्कुराने से उसकी ताकत में इजाफा होता है। टेंशन रिलीफ करने में मुस्कुराहट अहम किरदार अदा करती है और ये ब्लड प्रेशर पर फायदेमंद असर डालती है। यूनानी तिब की किताब में है कि दमा एस्टिमा जो एक ढीठ मरज है, कहा जाता है कि ये कब्र तक साथ जाता है, मुस्कुराहट को दमे का भी एक इलाज करार दिया गया है। जब कोई शख्स मुस्कुराता है तो उसके जिस्म से एंड्रियन फाइन नामी एक हार्मोन निकलता है जो कुदरती दर्द कुश यानी नेचुरल पेन किलर दवा है। एक रिसर्च है कि एक मुस्कुराहट इंसानी दिमाग को 2000 चॉकलेट बार से ज्यादा मुतहरिक और खुशगवार बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाया करते थे। इस ज़मन में दो अहदीसे मुबारका मुलाहजा कीजिए। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन हर्स फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मुस्कुराते नहीं देखा। नंबर 2, हज़रत जरीर रदी अल्लाहु अन्हु का कहना है कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको नहीं रोका, यानी जो मांगा वो अता किया, और जब भी मुझे देखा तो तबस्सुम फरमाते ही देखा। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जरा सोचिए, अगर आप घर में हर किसी से मुस्कुराकर बात करें, रास्ते में किसी से मुलाकात हो तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, मस्जिद में नमाजियों से मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा हो, तो आपके अंदर का मौसम और बाहर का मौसम कितना प्यारा हो जाएगा। यकीनन अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मुसलमान भाई से मुस्कुराकर मिलने से इंशा अल्लाहुल करीम हर तरफ मोहब्बत भरी फ़ज़ा कायम हो जाएगी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुम ला आलिया की बारगाह में वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ लोग मुलाकात के लिए हाजिर होते रहते हैं और आप हर एक से मुस्कुराकर मिलते हैं। इसके बारे में आपसे सवाल हुआ तो आपने जो कुछ इरशाद फरमाया वो मुलाहजा कीजिए। मुस्कुराहट का तोहफा। सवाल, मुस्कुराने की भी एक हद होती है, आखिरकार इससे भी आदमी थक जाता है, मगर आपको मुसलसल देखा गया है कि आप दौरान मुलाकात हर एक से मुस्कुराकर ही मिलते हैं, तो क्या आपको थकावट महसूस नहीं होती? जवाब, ये तो मूड मूड की बात होती है, लेकिन मैं कोशिश करके अपना मूड अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ और मुस्कुराता रहता हूँ, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत है और सुन्नत की नीयत से मुस्कुराने में भी सवाब है। कभी कभार तो मैंने नोट किया है कि मुसलसल मुस्कुराने से यहाँ यानी गालों में मामूली सा दर्द भी महसूस होता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराता हूँ, क्योंकि हदीस पाक में है कि मोमिन के सामने मुस्कुराना सदका है। जो बेचारा बड़ी मुश्किल से मुझ तक पहुँचा है, क्या पता मेरी इस मुस्कुराहट से उसकी दिलजोई हो जाए। जिस बेचारे की 2 घंटे लाइन में लगने के बाद बारी आई है, मैं इसे और कुछ ना दूं तो क्या एक मुस्कुराहट का तोहफा भी ना दूं? अगर मैं इसे मुस्कुराकर देख लूं और माशा अल्लाह कहकर पीठ थपका दूं और सर पर हाथ फेर दूंगा तो इससे उसकी दिलजोई हो जाएगी। हुजूर की मुस्कुराहट। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी मुस्कुराहट होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक ओलों की तरह चमकते थे।